نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نماز نبی میں سے ہم جس ٹاپک پہ ڈسکشن کریں گے اور اپنے لیے عمل کے پوائنٹس لیں گے وہ کیا ہیں؟ قبلے اور سترے کے احکامات بڑے اہم ہیں، کیونکہ اذان کا ٹاپک تھوڑا سا خواتین سے اتنا ڈائریکٹ میچ نہیں کرتا، تو ہو سکتا ہے آپ نے یہ سوچا ہو کہ بھئی ہمیں اس سے کیا ملے گا، حالانکہ علم کے ہمیشہ فائدے ہی ہوتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قبلے اور سترے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. پہلی بات یہ ہے، اور یہ مسائل غور سے سنیے گا کیونکہ بعد میں بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوں گے، تو بہتر ہے کہ اس بات کو ہم غور سے ہی سن لیں. پہلی بات ہے کہ نفل یا سنت نماز سواری پہ ادا ہو سکتی ہے. جدھر سواری کا منہ ہوگا ادھر ہی منہ کر لیا جائے گا، یعنی قبلے کے ایک دفعہ تعین کرنے کے بعد سواری پہ نفل نماز ادا کی جا سکتی ہے. سنت طریقہ کیا ہوتا تھا کہ آپ جب سواری پر نفل پڑھنے کا ارادہ کرتے تو اونٹنی کا منہ قبلہ رخ کر لیتے اور تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کرتے، اس کے بعد نوافل ادا کرتے جس طرف مرضی سواری جائے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ اب آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے، آپ کے پاس بہت وقت ہے، نفل پڑھ سکتے ہیں آپ. ہمارے پاس یہ بھی سنتیں آج نہیں ہیں، ہم باتیں کرتے رہیں گے ایسے ہی بیکار، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، وضو کیا ہوا ہے اب دو نفل پڑھ لیں، سفر میں ہیں کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں اشارے سے پڑھیں گے. اب آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، اب آپ کو ممکن ہے کہ قبلے کی طرف اپنا منہ پھیر سکیں، سائڈ پہ پیچھے، ذرا آپ گاڑی تو نہیں پوری مڑوائیں گے، تو آپ وہاں بیٹھے بیٹھے اپنے رخ کو تھوڑا سا بدل کے تو سنت اور نفل دونوں ادا کر سکتے ہیں. لیکن فرض نماز اس طرح سے نہیں ہوتی، فرض نماز کے لیے قبلہ فرض ہے، اس کے لیے آپ کو قیام بھی کرنا ہوتا ہے اور فرض بھی، یعنی اس کے لیے آپ کو قیام بھی اور قبلے کا تعین دونوں ضروری ہیں. اس کے لیے پھر آپ کو گاڑی سے اتر کے رک کے، یعنی ایک جیسے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں اس طرح پڑھنی چاہیے. دوسری بات ہے کہ سواری پہ جب نماز پڑھی جائے گی تو رکوع کے لیے سر کو جھکایا جائے گا اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھکایا جائے گا، لیکن آگے مثلا جیسے ڈیش بورڈ ہوتا ہے اس پہ نہیں رکھا جائے گا، یا پچھلی سیٹ پہ بیٹھے اور اگلی سیٹ کا جو بیک ہے اس پہ سر نہیں رکھیں گے. جب بھی کوئی نماز بیٹھ کے پڑھے تو اس کو بیٹھ کے کسی چیز کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ جو کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو وہ اپنے آگے تکیے رکھ لیتے ہیں، پھر وہ اپنے برابر اس کو کر کے تکیے پہ سجدہ کرتے ہیں، یہ درست طریقہ نہیں ہے. بس جھکیں گے اور تھوڑا سا زیادہ سجدے کے لیے جھک جائیں اور کم جھکیں. ٹھیک ہے، فرض نماز کے لیے اللہ کے نبی نے جب ادا کرنا ہوتا، میں دلیل آپ کو سنا دیتی ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب فرض نماز ادا کرنی ہوتی تو سواری سے اترتے، قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے. ٹھیک ہے، پھر اگلی بات ہے قبلے کا تعین کیا ہے. شمال اور جنوب کے درمیان مغرب کی طرف تمام سمت قبلہ ہے. ہمارے ہاں قبلے کے معاملے میں بڑا تشدد برتا جاتا ہے، ایک لائن سے کوئی اتنا سے ادھر ہو جائے نا تو لوگ کہتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوئی. انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی آپ کو، اور آپ جب قرآن پاک تفسیر سے شروع کریں گے دوسرے پارے میں آپ یہ مسئلہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے شطر کا لفظ استعمال کیا ہے، شطر المسجد الحرام. اور شطر کا لفظ صرف ایک لائن نہیں ہوتی، یعنی آپ ایک دائرہ کھینچے نا تو ایک دائرے کے بیچ کا اتنا ٹکڑا، بس آپ جیسے یہ میری دو انگلیوں کے بیچ کا فاصلہ دیکھیں، اب یہ پورا دائرہ ہے، تو اس پورے حصے کو شطر کہیں گے. اب یہاں پڑھ لیں، اتنی ادھر کر لیں، ادھر کر لیں، اس کے اندر اندر ہے. اسلام نے کوئی ایک لائن نہیں کھینچی کیونکہ ہر ایک کے پاس کمپس نہیں ہوتے. ہم زندگی کے قبلوں میں تو کبھی کبھی پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا چاہتا ہے، شادیوں میں اسلام کا کیا قبلہ ہے، موت میں غمی میں اسلام کا کیا قبلہ ہے، خوشی اور غمی میں کیا قبلہ ہے، بچے کی پیدائش کے ہونے یا اس سے پہلے کے مراحل میں کیا قبلہ ہے، لیکن نماز کے وقت ہم بہت تشدد برتتے ہیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت رکھی ہے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ اگر قبلے کی جانب نماز پڑھتے وقت سامنے کوئی قبر ہو تو کیا کیا جائے کہ قبر سے پھر آگے بڑھ کے نماز پڑھا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قبرستان میں نماز جائز نہیں ہے اور قبر کی طرف بھی نہیں، اس سے شرک ہوتا ہے. اسی سے پھر وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ جو مسجد نبوی میں جا کے لوگ نہ سمجھی کی وجہ سے اور محبت کی وجہ سے شرک کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ ہے نا وہ یوں ہے، اور آپ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، جو لوگ گئے ہیں وہ میری بات سے شاید اتفاق کریں گے، قبلہ سامنے ہے یوں، اور اگر اللہ کے نبی کی قبر کو فیسنگ کرنا ہے آپ نے تو آپ یوں کرتے ہیں، मैंने खुद देखा कि हमारे मुल्कों की औरतें बेचारी मोहब्बत में गई तो वो अल्लाह के नबी की कब्र की तरफ मुंह करके हाथ उठा के यूं दुआ मांग रही थी। अब वो पता नहीं दुआ मांग रही थी या क्या कर रही थी, तो वहां जो बीच में मतवियात होती हैं जो रोकती हैं, तो वो उसके हाथों पे स्टिक मार रही थी, कहती थी इधर नहीं खड़ी हो, सामने मुंह करो। कि इवन दुआ भी कर रहे हैं वहां खड़े होके, तो आपको अल्लाह के नबी की कब्र की तरफ मुंह नहीं करना, क्योंकि हम अल्लाह से मांगते हैं और अल्लाह के नबी से नहीं मांगते। फिर अगली बात है सुतरा। इससे बहुत लोग गाफिल हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो की मज़ीद ज़रूरत है। सुतरा कहते हैं वो चीज़ जो नमाजी अपने आगे रखे, ताकि कोई दूसरा शख्स उसकी नमाज में से उसके आगे से गुजरे तो फिर इसकी नमाज ख़राब ना हो। इसके बारे में जो बात है वो क्या थी कि सुतरा लाठी, बर्छी, लकड़ी, दीवार, सुतून और दरख्त वगैरह की चीज़ों से हो सकता है। यानी आप कहीं भी नमाज़ पढ़ते हैं, मिसाल है कि इस हॉल में आपको नमाज़ पढ़नी है, आप क्लास ख़त्म हुई आप कहते हैं अच्छा मैं जोहर की नमाज़ पढ़ लूँ, क्या करेंगे, जहाँ मर्जी खड़े हो जाएंगे? नहीं, आप दूसरों को भी गुनाहगार करेंगे। आप पहली बात है अपने लिए कोना चूज़ करें, आपके सामने दीवार हो, यानी इतनी जगह हो कि जहाँ आप सजदा कर सकें वहाँ पढ़ें। कोई ऐसी जगह नहीं, जैसे किसी जगह आप गए मस्जिद में, बहुत बड़ी मस्जिद है, हॉल है पूरा, आप अकेले थे, आप क्या करें, अपने आगे अपना बैग रखें। सुतरा जो उसकी ख़ास लंबाई होती है इतनी, यानी आपने फरमाया कि पालान की पिछली लकड़ी के बराबर, कोई शख्स नमाज अपने सामने रख ले तो उसके आगे से गुजरने में फिर उसकी परवाह ना करे, और ये छोटा सा होना चाहिए, यानी एक हाथ लंबी, हाथ ये पूरी कोहनी से लेके यहाँ तक को भी कहते हैं, ये भी बाद लोग ज़मीन पे एक लाइन खींच लेते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। सही मसला क्या है कि सामने खड़ा किया जाए ऐसी चीज़ को कि उसके बाद फिर अगर कोई आगे से गुजरता है तो गुनाह नहीं होता। फिर अगली बात है कि इमाम का सुतरा मुक्तदी के सुतरे के लिए काफ़ी होता है। अब ये चीज़ अगर ना होती तो यकीन करें हम ख़वातीन की तो सारी नमाज़ें ख़त्म हो चुकी होती। जो ही नमाज़ आप खड़ी करते हैं लोगों के बच्चे सफ़ों में से गुजर के आ रहे होते हैं, और बस ना समझ औरतें भी आगे से गुजरती हैं। अगर आगे वाकई वो बात ना हो ना कि दूसरे रूम में इमाम के आगे जो सुतरा है वो आपके लिए काफ़ी है, तो ये हरम की नमाज़ें भी हमारी ना हो। अब देखते हैं कि नमाज़ पढ़ते हुए हरम में भी लोग आगे से गुजर रहे होते हैं, तो इमाम के आगे जो सुतरा है वो आपको किफ़ायत कर रहा है, वरना तो आपकी नमाज़ टूट जाए। यानी इसमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। फिर अगली बात है कि नमाजी के आगे से गुजरना शदीद गुनाह की बात है। हमने सीखा कि आपने फरमाया कि जो नमाजी के आगे गुजरने की सजा को अगर जानता हो तो 40, इसके आगे आपने दिन महीने या साल क्या कहे इसमें रावी को शक है, कि 40 तक वहां खड़ा रहना पसंद करे। देखिए अल्लाह ताला इंसान की नमाज की हिफाजत कर रहा है, तो जहां नमाज की हिफाजत आगे गुजरने से नहीं, तो फिर उसके पास शोर करना, टीवी चलाना, बातें करना, अजियत देना, ये कितनी मुश्किल बात, कितनी गलत बात होगी। तो इसलिए इंसान को जहां कोई नमाज पढ़ रहा हो ना, तो वहां हत्तुल वहाजा खामोश रहना चाहिए। मैं हैरान होती हूँ कि लोग नमाज भी ऐसे पढ़ते हैं कि जैसे दुनिया की हमारी बातें चल रही होती हैं। आप किसी को दूसरे के साथ बात करता देखे ना, तो हुक्म है कि वहां से हट जाए, या आप अगर दो लोग बात करना चाह रहे हैं तो वहाँ से हट जाएं। तो नमाज क्या है? अल्लाह से बातें हो रही हैं। नमाज में बंदे की हालत बदल सकती है, नमाज में बंदा अल्लाह सुबहान तआला से राज व न्याज कर रहा होता है, उसके दिल की उसमें यानी इस तरह की बातें उसके दिल में आ रही होती हैं, तो क्या ये सारी चीज़ें बंदे को अपनी नमाज को हिफाजत करने के लिए नहीं करनी चाहिए? तो बीच में किसी जगह अगर आप कोई काम ऐसा करते हैं कि जिससे आपकी नमाज ख़राब हो, तो उससे अवॉइड कीजिए। फिर अगली बात है कि अगर कोई नमाज पढ़ते वक्त अगर आपके सामने से गुजरना चाहे तो उसको हाथ से रोकना चाहिए। आपने फरमाया ये शैतान होता है, यानी कि रोकने के बावजूद भी अगर ना रुके, बार बार गुजरना चाहे, तो फरमाया उससे लड़ाई करो, यानी वो एक शैतान है जो आपकी नमाज में खलल डालता है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने नमाज अदा की तो एक बकरी दौड़ती हुई आई और आपके आगे से गुजरना चाहिए, आपने उसका रास्ता रोका कि बकरी को फिर सुतरे के पीछे से गुजरना पड़ा। तो आपने यानी फरमाया कि शैतान जो है वो बाज़ दफ़ा इंसान के सामने उसकी नमाज की खराबी के लिए मुख्तलिफ तरह से रूप धार के आता है। फिर इसी तरह इंसान की नमाज और जो सुतरा है उसके बीच में एक बकरी के गुजरने का फासला होता था, यानी वो उतना ही तकरीबन जितना आजकल हमारे एक जाय नमाज की लंबाई होती है, 1 सवा मीटर, के जहाँ पर आराम से सहूलत से सजदा कर सके। फिर अगली बात यह कि बालिग औरत, गधा और स्या कुत्ता, इसके अगर गुजर उसके आगे से गुजर जाने से नमाज टूट जाती है, और स्या कुत्ता जो है वो भी शैतान है। अब आप बताइए कि जो औरतें हम नमाज़ पढ़ते हैं और हमारे आगे से औरतें गुजर जाती हैं, तो क्या हमारी नमाज़ कायम रहती होगी? मैं सोचती हूँ कि वो लोग तो बेचारे दीन से दूर हैं ही, जो नमाजें पढ़ते ही नहीं है, जिनको तो जिन्होंने अपने आप को फारिग किया हुआ है, लेकिन जो दीन सीखने सिखाने और पढ़ने पढ़ाने के लिए भी मस्जिदों में आते हैं ना, उनको भी बड़ी इसलाह की ज़रूरत है। और कम अज़ कम इन चीज़ों को पढ़ते हुए हमें अपने अमल को देखना है, कभी किसी की नमाज के आगे से ना गुजरे। और अगर आप पढ़ रहे हैं तो ऐसी जगह पढ़ें कि जहाँ कोई आपके आगे से ना गुजरे। बाज़ लोगों को समझ नहीं आती, वो हवनकों की तरह फिर रहे होते हैं, यूँ नीचे तो वो देखते ही नहीं है, उनकी नज़रें तो पता नहीं कहाँ लगी होती हैं। तो वो ऐसे लोग जो हैं वो फिर नमाज के आगे से भी गुजर जाते हैं, इससे बहुत ज़्यादा अवॉइड करनी चाहिए। फिर अगली बात हमने इसमें सीखी कि अगर कोई सो रहा हो और जगह ही नहीं है कोई और जगह, तो उसके पीछे नमाज हो सकती है। कोई बच्चा सो रहा है आपका, कोई औरत सो रही है। हज़रत आयशा कहती हैं कि मैं अपने हुजरे में सोई होती थी, मेरे पाँव आपके सामने होते थे रात को, यानी ये तहज्जुद का वक्त होता था, तो अल्लाह के नबी जब सजदा करना चाहते तो मैं अपना पाँव समेट लेती, जब आप खड़े हो जाते तो मैं अपना पाँव फैला लेती, और इन दिनों घरों में चिराग नहीं होते थे। इससे ये भी पता चल रहा है कि घर कितना छोटा था, यानी इतना छोटा हुजरा था कि एक सोए तो दूसरा खड़ा होकर नमाज पढ़े, तो उसके लिए इतनी भी जगह नहीं कि आगे उसको पूरा सजदा करे। तो इससे हमें पता क्या चला कि गुजरना मना है, लेकिन अगर कोई लेटा हुआ पीछे तो फिर उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, फिर इसी तरह देखिए, कभी आप ऐसी जगह जाते हैं जहाँ सुथरा नहीं आपके पास होता, कोई चीज़ है ही नहीं, तो क्या किया जाए? या कोई ऐसा बंदा पढ़ रहा है कि जहाँ उसने आगे कुछ नहीं रखा, तो आपको मजबूरन गुजरना है, तो एक सफ का फासले के बाद से फिर गुजरें, तो फिर इंशाल्लाह उससे हर्ज नहीं होता। ठीक है, अब आप देखिए हालात फ़र्क हैं, आइडियल हालात और होते हैं, मजबूरी के हालात और होते हैं, तो जिस तरह के हालात होंगे उसी तरह से फिर इंशाल्लाह ताला हम उस तरीके को साथ लेके चलेंगे, तो अल्लाह ताला फिर हमारे लिए आसानियाँ करेगा। कोई सवाल इस दो मौजूद से मुतल्लिक जो हमने इसमें डिस्कस किए? जी, इन्होंने सवाल किया जहाज़ में नमाज़ पढ़ने की, पीछे से आपका सवाल, फ़र्ज़ नमाज़ गाड़ी में बैठ के नहीं पढ़ सकते, इल्ला ये कि कोई हैंडी कैप है जो पढ़ते ही बैठ के है, खावत कोई ऐसे लोग होते हैं ना हैंडीकैप्ड कि जिनके लिए खड़ा होना मुमकिन नहीं, या जो वैसे भी खड़े नहीं होते, फिर वो तो ज़ाहिर है कि पढ़ सकते हैं, लेकिन आम लोग बैठ के फ़र्ज़ नमाज़ नहीं पढ़ सकते। आप सोच सकते हैं कि एक खातून ने मुझे कहा कि मैं ड्राइविंग करते हुए भी नमाज का वक्त आता है तो नमाज़ पढ़ लेती हूँ, आप ज़रा सोचें। कई कहती हैं हम बच्चों को स्कूल लेने जाते हैं तो वहाँ हमें लाइन में लगना पड़ता है, तो हम वहीं बैठे बैठे नमाज़ पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है, फ़र्ज़ नमाज का मसला अलग है। ठीक है, जहाज़ के अंदर नमाज़ पढ़ने का भी तरीका वही होगा कि आप इतना मज़ा आता है, यकीन करें मुझे तो सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है कि वक्त नमाज़ का और हम पढ़ें। आप क्यों गिव अप करते हैं, स्पेशली जब लॉन्ग फ्लाइट्स होती हैं तो उसमें आप जाके पीछे आराम से पढ़ सकते हैं, ये मसला आगे आने वाला है, इसलिए वहाँ हम इसकी डिटेल सारी साथ ही चाहती हूँ कि फिर वो वहीं रिकॉर्डिंग में भी मसले आएँ, क्योंकि बाद में कोई एक स्पेसिफिक मसला सुनता है तो वो वहीं पर होना चाहिए, तो इंशाल्लाह इसको हम वहाँ डिस्कस करेंगे। जी, इसका बैकग्राउंड ये था कि अल्लाह के नबी को सुनवाए सिखाए गए थे, एक सहाबी को ख्वाब में सुनाई गई थी अजान, तो उन्होंने जाके अल्लाह के नबी सल्लम को सुबह आके बताया कि रात को मैंने ख्वाब में ये देखे हैं, तो आपने उसकी तस्दीक की और फिर वो अजान में शामिल हुए। और इस तरह आता है कि जिब्रील ने भी सिखाए थे, यानी ये अल्लाह के नबी के तौर से हुए। अब आज यहाँ एक छोटी सी बात कहूँगी अजान के बारे में कि बाज़ जगह ऐसा होता है कि अजान के बाद एक ख़ास तौर का दुरूद पढ़ा जाता है, पता नहीं किस तरह पढ़ते हैं, जायज़ नहीं। देखिए, इबादत में कमी पेशी नहीं कर सकते, अब अजान से पहले अजान के बाद कोई ऐसे लफ्ज़ कोई दुरूद पढ़े जाने, ये चीज़ें इस्लाम यानी इसकी रुख्सत नहीं है, इजाज़त नहीं है। ये कहती हैं कि माई 4 ईयर सन ओल्ड सन टुडे ही वेंट मस्जिद टू ऑफर नमाज इमाम फजर फजर नमाज, प्लीज़ प्रे फॉर हिम। अच्छा जी, अल्लाह ताला उसको हमेशा के लिए पक्का नमाजी बना दे, और बच्चों को थोड़ी सी तरबियत देने के बाद फिर लेके जाना चाहिए मस्जिदों में ताकि वो शुरू से यूज्ड हों। आफ्टर नमाज इन मस्जिद वुमेन यूज देयर पर्सेस टू पास, समझे? हाँ जी, ये भी एक मसला होता है, जिनको जाना होता है वो कहती है मेरा पर्स आगे से दे दे। देखिए, शऊर के साथ इंसान जिए। आप जब नमाज के लिए मस्जिद में गए तो आपको पता है ना कि आपको जल्दी निकलना है, आपको पता है ना कि आपको यानी कोई मसला पैदा हो सकता है, पहले से उसका हल ढूंढे। अच्छा, एक ये सफ़ों पे भी जब बात आएगी तो वहाँ तो आप बहुत सारी बातें देखेंगे, यानी जो चीज़ें मैं मस्जिदों में जाके सीख देखती हूँ मेरा दिल कुड़ता है। मैं जाती तो नमाज़ पढ़ने के लिए हूँ, कभी कभी जैसे मैं हमारे करीब भी मस्जिद है वॉक के पे जा सकते हैं, लेकिन वहाँ से मैं बोझल दिल के साथ आती हूँ, जिसका दिल चाहता है जहाँ खड़ा नमाज़ पढ़ा है, सफ़ बनी हुई है वो पीछे अपनी पढ़ रहे हैं, वो सफ़ आगे है वो अपनी अलग से जमात की हुई है उन्होंने, ये सारी चीज़ें इल्म की कमी है। जी आप,
हमें जिस है ना आगे से गुजर जाए तो कुछ नहीं होता, मस्जिद नबी में नहीं उतरना चाहिए, किसने क्या आपकी?
हाँ जी, देखिए मस्जिद हराम में मुमकिन ही नहीं है ना कि आपके आगे कोई ना गुजरे। और फिर वही बात है कि अगर फ़र्ज़ नमाज है तो इमाम का सुतरा तो आगे होता ही है ना, तो वो आपको किफ़ायत करता है। लेकिन हमें अपने तौर पे हत्तुल वसा कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी जगह खड़े हों जहाँ कोई ना गुजरे, पिलर हो कोई, या आप अलग से औरतों का हिस्सा है। और इसके लिए देखिए डिसिप्लिन के साथ जब होते हैं ना, पगली सफ़ों को पूरा करते हैं तो कोई पीछे गुजरता ही नहीं है। ठीक है जी, आप किसी का सवाल है जी? आप जी ये कहती हैं कि बच्चे नमाज में तंग करते हैं जब हम उनको मस्जिदों में ले जाते हैं, अगर आगे से गुजरें तो क्या करें? बहुत अच्छा सवाल है आपका। आप देखिए कि बच्चों को पहले से ट्रेन करना चाहिए। हम कहीं भी जाते हैं तो बच्चों को कुछ मैनर्स और इस तरह की बातें सिखा रहे होते हैं ना, तो इस तरह ये भी सिखाइए कि बेटा वहाँ जा रहे हैं, एक फीलिंग अगर आप अपने बच्चों को दे देना, और वो क्या है कि मस्जिद अल्लाह का घर है। किसी के घर जाते हैं ना तो हम कितने प्रोटोकॉल से बैठते हैं, किसी को हमारी आवाज़ ना आए, कितना तरीके से बैठो, मेहमान क्या कहेगा, मेज़बान क्या कहेगा। मस्जिदों के अंदर आते हुए हम सब भी अगर ये फीलिंग लेके आए ना कि यह अब अल्लाह का घर है, यकीन करें मैं इतनी हैरान होती हूँ कि लोग मस्जिद के प्रेइंग रूम में बैठे हिप्ते कर रहे होते हैं, और ख़वातीन बच्चों को लेके आती हैं, वो स्कूल पढ़ रहे हैं कुछ पारा, और माएँ पीछे फ़ैशन की बातें कर रही हैं, किताबों की बातें कर रही हैं, किताबों की तो क्या यानी कपड़ों की बातें कर रही हैं। ये शऊर की कमी है। मस्जिद के प्रेइंग रूम में कम से कम आवाज़ ऊंची नहीं होनी चाहिए, और बाज़ लोग जाके अंदर हालचाल पूछ रहे हैं, सलाम करें, मैं तो मुंह नीचे कर लेती हूँ, क्या करे बंदा। बाज़ लोग आपको देखिए कि बाज़ लोग आपको जुमे के खुतबे के दौरान सलाम करते हैं, आप इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे कितना बड़ा गुनाह है खुतबे के दौरान इवन किसी को सलाम भी करना, या किसी को ये भी कहना कि तुम चुप रहो, उसने भी लख बात की। तो लिहाजा ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता माहौल डेवलप करना चाहिए, लेकिन बच्चों को सिखाएं, और फिर अगर वो ऐसी कोई गलती करे तो उनको सिखाएं। यकीन करें छोटा बच्चा भी समझता है, आंख का इशारा भी समझता है, और लेकिन फिर यह कि उसके लिए अगर कभी वो ऐसा काम करता है तो आइंदा फिर उसको उसके लिए ट्रेन करें। एक तो बहुत छोटे बच्चे हैं ना, तो उनको तो वैसे ही किसी की कस्टडी में ही दे के नमाज़ पढ़ें। लेकिन ये जो मैं अभी चंद दिन पहले भी मैं एक मस्जिद में गई, अब माएँ अंदर कुछ सुन रही हैं और प्रेइंग रूम में बच्चे यूं दौड़े लगा रहे हैं और भाग रहे हैं कि जो बच्चियाँ भी वहाँ बच्चियां अपनी खड़ी बातें कर रही हैं। मैंने कहा देखिए इन बच्चों को समझाएं कि ये प्रेइंग रूम है, आप बैठ के इनके साथ कुछ काम कर लें, इनको कुछ सिखा दें, ये कोई प्लेग्राउंड थोड़ी है क्या पूरी मस्जिद के अंदर ऊपर नीचे चक्कर लगा रहे हैं और भाग रहे हैं। इसी से फिर इनके जहन से शुरू से तकद्दस ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी, हाउ लॉन्ग शुड सूरा बी, आएगा ये मौजू इंशाल्लाह। अभी आपकी असल नमाज शुरू नहीं हुई, नमाज जब इस चैप्टर आगे आएंगे तो उसमें आप सीखेंगे। सूत्रा की विड्थ कितनी होनी चाहिए, कितनी भी हो जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस लंबाई का है, यानी 1 फुट समझ लें अपने जहन में, एक पतली सी स्टेक, कोई छड़ी दरख्त से उतार के, जैसे आपका ये पर्स है ये भी किफ़ायत करता है इंशाल्लाह ताला।